Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratna Kalpojwalangam Parasumrigavara Vidihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutam Amaraganir Vyagrakritim Vasanam Visvadyam Visvavandyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padma Bhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Matha Sisishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sisyam Tanto Takam Vartika Karamanyan Asmad Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Sreya Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dharine Om Shanti 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya
Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya
Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya
Haraya Nama Om
Haraya Nama Om
Haraya Nama Om Namo Haraya
Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya
Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om
Namo Haraya
Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya
Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya
Mridaya Nama Om Mridaya
मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय
मृडाय नम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय
मृडाय नम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय
शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम नम शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम
भज मन शिव शिव निरंतरम
जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम
रट मन शिव शिव निरंतरम
स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद का चतुर्थ अध्याय में 18वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि
यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि
न सन्न चा सच्चिव एव केवलः
न सन्न चा सच्चिव एव केवलः
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यम्
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यम्
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
नैनं मूर्धं न तिर्यं च
नैनं मूर्धं न तिर्यं च
न मध्ये परिजग्रभत्
न मध्ये परिजग्रभत्
न तस्य प्रतिमा अस्ति
न तस्य प्रतिमा अस्ति
यस्य नाम महद्यशः
यस्य नाम महद्यशः
न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य
न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्
हृदारिदिस्तं मनसाय एनम्
हृदारिदिस्तं मनसाय एनम्
एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति
एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति
अजात इत्येवं कश्चित्
अजात इत्येवं कश्चित्
भीरुः प्रपद्यते
भीरुः प्रपद्यते
रुद्रयते दक्षिणं मुखं
रुद्रयते दक्षिणं मुखं
तेन मां पाहि नित्यं
तेन मां पाहि नित्यं
मानस्तोके तनये मान आयुखी
मानस्तोके तनये मान आयुखी
मानो गोखु मानो अश्वे कुरीरिख
मानो गोखु मान अश्वे कुरीरिख
वीरान् मानो रुद्रभामितो
वीरान् मानो रुद्रभामितो
बदिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे
बदिर्हविष्मन्तः सदामित त्वां महाभवामहे।
तो उपनिषद का प्रसंग चल रहा है, पदार्थ शोधन के अंतर्गत तत्पद का जो शोधित अर्थ है वो कैसा है उसी को बता रहे हैं। जहां लक्षणावृत्ति के द्वारा भागत्याग लक्षण करी जाती है, जहद अजल लक्षण के द्वारा जब समस्त उपाधियों का बाध कर दिया जाता है, तो उस अवस्था में जो परमात्मा का स्वरूप निखरता है वह है यदा तमः। वहां कोई अविद्या का लेश भी नहीं रहता है। जब मूल अविद्या का कोई अंश नहीं रहता है, तब उसका कार्य रूप जो अविद्या है, दिवा और रात्रि ये भी नहीं रहते, क्योंकि समस्त प्राणी प्रवृत्ति का यही दो आधार हैं, दिवा और रात्रि। प्रवृत्ति और निवृत्ति का ये रात्रि है और दिन है। सामान्यतया दिन प्राणियों के लिए प्रवृत्ति का कारण बनता है और रात्रि निवृत्ति का कारण बनता है। समस्त ये जगत यही प्रवृत्ति और निवृत्ति इस दो व्यवहारों पर टिका हुआ है। और जहां मूल अविद्या नहीं है, वहां प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक व्यवहार नहीं रहता। यानी प्रवृत्ति कर कोई अदृष्ट उत्पन्न होने वाला नहीं। अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा तो अपूर्व नहीं होगा, अपूर्व नहीं तो अदृष्ट नहीं, तो अदृष्ट नहीं तो कर्म फल नहीं, और निवृत्ति भी नहीं होगी। निवृत्ति नहीं होगा मतलब कोई साधना भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां साधक और साधन और साधन का फल साध्य ये तीनों नहीं रहेंगे, क्योंकि तीनों का मूल है अविद्या। जहां अविद्या नहीं तो ये सब चले गए। उसी बात को बताया, न सन् न चाचत् शिव एव केवलः। वहां सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। सत कार्य रूप व्यावहारिक जगत और असत कारण रूप अव्यक्त अनव्यक्त अमूर्त रूप सूक्ष्म जगत, ये दोनों ही नहीं रहते। फिर क्या रहता है? तो शून्य। बोले नहीं, शिव एव केवलः। सभी प्राणियों ने जिस वस्तु को चाहा है वही शिव, वही केवल अकेला वह रहता है। इस मंत्र के द्वारा उन वैष्णव सिद्धांतों का तमाम खंडन कर दिया गया है जो ये मानते हैं जीव सत्ता पारमार्थिक सत्ता है, ये मानते हैं, उनकी इस मान्यता को ये खंडन करता है। परमार्थ में एक ही सत्ता हो सकती है, दो सत्ता नहीं रह सकती है। शिव एव केवल का मतलब हुआ कि जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो जीव को पारमार्थिक सत्ता वाला जो मानते हैं उसके लिए ये जवाब दिया श्रुति ने। और ये पहले के तन्न दिवा न रात्रि न सन्न चाछत इस पद के द्वारा जगत को पारमार्थिक सत्ता जो मानते हैं त्रैतवादी आर्य समाजी लोग, त्रैतवादी, जगत जैसा अभी है वैसे ही हमेशा रहेगा, पारमार्थिक सत्ता है इस संसार का। ये द्वंद्व का, ये द्वैत का, ये द्वंद्व का, कार्य जगत का, ये पारमार्थिक सत्ता है, बिल्कुल सत्य है। जैसे परमात्मा सत्य है वैसे ये सत्य है। परमात्मा और जगत के बीच का जो भेद है वो हमेशा ही रहेगा, जगत जगत के रूप में रहेगा, परमात्मा परमात्मा के ही रूप में रहेगा। इसी तरह जीव और परमात्मा के बीच में जो भेद है वो हमेशा रहेगा, ये भेद का अभाव नहीं होगा। जिस तरह अभी अज्ञान अवस्था में जीव और परमात्मा की भिन्नता है, ये भिन्नता बिल्कुल पारमार्थिक है, सत्य भिन्नता है, ये कोई काल्पनिक भिन्नता नहीं है, मायाकृत भिन्नता नहीं है। इसी तरह जगत और जीव की जो भिन्नता है वह भी पारमार्थिक पंचभेद ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा मानने वाले वह द्वैतवादी और त्रैतवादियों को यह श्रुति जवाब देती है। ये सब कुछ तो जब तक मूला विद्या रहता है तब तक है, ये भिन्नता मूला विद्या से टिका हुआ है, मूला विद्या खत्म होते ही ये भिन्नता खत्म हो जाएगी। वाच्यार्थ में ये भिन्नता है, जहां वाच्यार्थ का कारण अविद्या रहे तब तक ये भिन्नता की प्रतीति होगी। जब शोधित अर्थ वाच्यार्थ खत्म हो जाता है, इसका कारण अविद्या नष्ट हो जाता है, तो ये भिन्नता परमार्थ में नहीं है। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिर न सन्न चाछत, फिर क्या है उस समय? शिव एव केवल, केवल एक ही सत्ता है। मूल वस्तु जो एक सत्ता है वह पारमार्थिक सत्ता है, उसका नाम है शिव, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है केवल, उसी का नाम है अद्वैत, उसी का नाम है सत, उसी का नाम है चित, उसी का नाम है आनंद। शिव एव केवल अर्थात आनंद एव केवल, वहां केवल आनंद रहता है। शिव एव केवल माने केवल चित मात्र रहता है, ज्ञान मात्र रहता है। शिव एव केवल का अर्थ हुआ केवल सत्ता मात्र रहती है। तद अक्षरम, वो जो सत्ता है वह अक्षर है, क्योंकि अक्षर वह जो शिव है वह निरवयव है, निरवयव होने के कारण वह अक्षर है। अक्षर माने घटने वाला नहीं और बढ़ने वाला नहीं है। न चरकती इति अक्षर, इसके संकेत कलाम ने किया था। तद अक्षरम, और वह जो अक्षर अविनाशी जो शिव तत्व है, पारमार्थिक तत्व, उसकी तत्सवितुर्वरण्यम, वह सविता के द्वारा वर्णीय है। सविता माने सूर्य, सारे जगत का जो साक्षी सूर्य है उसके द्वारा वर्णीय है। वर्णीयम संभजनीयम कमनीयम, ऐसा अर्थ किया गया है। गायत्री मंत्र में आता है तत्सवितुर्वरण्यम, वहां जो तत्सवितुर्वरण्य पद आया है वह सूर्य के लिए आया है, और यहां तत्सवितुर्वरण्य में आया है वह शिव के लिए आया, सूर्य के लिए नहीं है, क्योंकि संदर्भगत उसकी व्याख्या होती है। गायत्री मंत्र जिस प्रसंग में पढ़ा गया है वह अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग है, और वह सूर्य उपासना का प्रसंग है, इसलिए वह गायत्री मंत्र के का मूल देवता है सूर्य। लेकिन आजकल समाज में एक और नया प्रचलन चालू हो गया, गायत्री मंत्र का मूल देवता देवी है कहते हैं, तो गायत्री देवी की मूर्ति बनाकर रखने लग गए। वह तो वह गायत्री जिस छंद में पठित है वो छंद का नाम गायत्री, और उस छंद के चलते देवी का प्रतीक बना दिया। लेकिन इस गायत्री के जो अधिष्ठात्री देव हैं वह हैं सूर्य। तत्सवितुर्वरण्यम, तत् माने वह, इस गायत्री मंत्र का जो देवता है वह सविता है। सविता माने प्रसविता है, सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है। वरण्य है माने समस्त संसार के जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के द्वारा वरणीय है। सूर्य सभी के द्वारा वर्णीय है, शायद ही अव्यक्ति दोष आ जाए, लक्षण परिष्कार में एक जगह अव्यक्ति दोष आ जाए, उल्लू के द्वारा शायद वर्णीय न हो, तो अव्यक्ति दोष। लक्षण जिस अर्थ में बनाया जा रहा है वो लक्ष्य समस्त लक्ष्य में यदि नहीं पहुंचता, किसी लक्ष्य में पहुंचता है किसी लक्ष्य में नहीं पहुंचता है, तो उसको अव्यक्ति दोष मानते हैं। सूर्य सभी प्राणियों के द्वारा वर्णीय है, ये लक्षण है, तो इसका मतलब सभी प्राणी द्वारा वह वर्णीय होना ही चाहिए, लेकिन उल्लू के द्वारा तो वर्णीय नहीं है, तो लक्षण अव्याप्ति दोष हो गया, उल्लू में नहीं गया, उल्लू उसका वर्ण नहीं कर सकता है। उल्लू ये कह सकता है कि मुझे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, कह सकता है, तो फिर ये लक्षण दूषित हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम वर्ग, सभी का वरण पोषण करने वाला है इसीलिए वर्ग है। वरण्य के रूप में भले ही उल्लू वरण न करे, लेकिन वर्ग के रूप में तो वरण करेगा कि नहीं वो, क्योंकि उसका वरण पोषण करने वाला तो वही है। वहां गायत्री में ये तत्सवितुर्वरेण्यम आया है, वह सूर्य के लिए आया है, लेकिन यहां तद अक्षरम वो शिव के लिए आया है। तत्सवितुर अपि वरण्यम, वह शिव ऐसा तत्व है कि सविता के द्वारा भी वर्णीय है, सबके द्वारा सविता वर्णीय है, और सविता के द्वारा वह शिव वाक्षर तत्व वर्णीय है। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी अंतिम पद है, क्योंकि उसी से पुराणी प्रज्ञा प्रसृता, पुरानी प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान रश्मि, पुराणी यानी पुरातनी, प्रसृता निसृता प्रवाहिता, उसी अक्षर शिव तत्व से समस्त ज्ञान राशि प्रवाहित हुई है। इसी बात को आगे के मंत्र के द्वारा ही कहा जाएगा कि हे शिवा, आप मेरी दक्षिणा मुख के द्वारा मेरी रक्षा करिए। अजात इत्येवं कश्चित् वीरो प्रपद्यते रुद्र यत्ते दक्षिण मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे रुद्र, आपकी जो दक्षिण मुख है उस दक्षिणा मुख के द्वारा नित्य मेरी रक्षा करें। उस मंत्र के संदर्भ में आपको व्याख्या करके हम बताएंगे कि दक्षिणामुख की विशेषता क्या है, क्यों ये प्रार्थना की जा रही है भगवान शिव से कि हे शिव, आप अपनी दक्षिणामुख के द्वारा ही हमारी रक्षा करें, इसकी क्या वजह है। भगवान पशुपति को आप जानते हैं, उनके विग्रह में पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, उनके पांच मुख हैं और तीन नेत्र हैं, और इन पांच मुख के क्रमश चार दिशाओं में चार मुख हैं और ऊर्ध्व दिशा में पांचवा मुख है, इसी को पंचवक्त्र कहते हैं। वक्त्र माने मुख, पांच मुख, पंचमुखी भगवान शिव, उनमें से एक मुख है दक्षिण मुख। उसकी क्या विशेषता है तो उसी संदर्भ में हम व्याख्या करने जाएंगे, लेकिन यहां यह कहा जा रहा है प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यहां प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जो है उसी से यह प्रसृत हुई है। जैसे कि यूं तो सभी नदियां हिमालय से प्रसृत हुई है, जितनी भी नदियां हैं सब हिमालयों से प्रसृत हुई है, लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं महाराज, गोदावरी तो कहां हिमालय से प्रसृत हुई है, यह तो नासिक जिला के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ है वहां से निकली है गोदावरी, अब उसको कोई हिमालय तो कहेंगे नहीं, वो तो पर्वत है, हिमाल नहीं है। क्यों महाराज तुम उसको हिमाल क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि व्युत्पत्ति के हिसाब से जहां हिम रहता है उसका नाम हिम, हिमाल, हिम का आलय हिमालय, बर्फ का आलय, तो वहां ब्रह्मगिरी में जाते हैं तो बर्फ तो मिलता नहीं है, तो कैसे हम उसको हिमालय कहेंगे? तो वहां से गोदावरी निकली है, अमरकंटक से नर्मदा निकली है, तो आप कैसे कहोगे कि सभी नदियां हिमालय से निकली हैं? और को तो छोड़ दो, ये सभी नदियां नाम रूपात्मक बाधित होने वाले हैं। मुख्य जो नदी है पृथ्वी का, जो महान नदी है, देव नदी, सुर नदी, गंगा, भागीरथी, वो तो गौमुख से निकली है, हिमालय से निकली है, और मानसरोवर से तो पंच नदी निकले हैं, ये तो पता है ही है। सतलुज वहीं से निकला है, ब्रह्मपुत्र वहीं से निकला है, सिंधु वहीं से, सरयू वहां से, और ब्रह्मपुत्र वहां से, ये चार पांच नदी मानसरोवर से निकले हैं। जैसे सभी, चाहे आप ब्रह्मगिरी कहिए, ब्रह्मगिरी तो ऊंचे पहाड़ से ही तो निकला है, चलो हिमालय नहीं तो हिमालय का बच्चा तो है ना, हिमालय का बेटा तो है। अमरकंटक भी पहाड़ ही है, पहाड़ से निकला है, नर्मदी नर्मदा वहां से निकली है, प्रतीक है ये। इसी तरह ये प्रज्ञा यानी ब्रह्म विद्या, प्रज्ञा च तस्मात उसी सवितुर्वरण्यम अक्षरम, उस अक्षरात वो शिव तत्व, शिव से ही ये सब प्रज्ञा प्रसृत हुई है। और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं प्रतिदिन, सदा शिव समारंभान शंकराचार्य मध्यमान अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। एक परंपरा ये है कि ब्रह्म विद्या सबसे पहले भगवान शिव से आरंभ हुआ, वहां से प्रसृत हुई है, और बीच में मध्यम में शंकराचार्य तक वह विद्या परंपरा आई, और फिर शंकराचार्य जी से ही वही परंपरा से ये ब्रह्म विद्या, अद्वैत ब्रह्म विद्या, आज हमारे अपने अपने वर्तमान गुरुओं तक वह ब्रह्म विद्या इसी परंपरा से आई हुई है। उस बात को संकेत करते हुए श्रुति ने कहा कि यह ब्रह्म विद्या की परंपरा कोई नवीन परंपरा नहीं है। हालांकि आजकल ऐसे बहुत से आचार्य लोग पैदा हो गए हैं, तथा कथित आचार्य लोग अपने को ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म विद्या के आचार्य और गुरु मानते हैं, वे लोग ये कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या, ये ज्ञान हमारी अपनी ज्ञान है, हम तुमको अपना ज्ञान देंगे, किसी और का ज्ञान नहीं देते, तुम हमारा ज्ञान ले लो भाई, और के ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा नहीं, हमारे ज्ञान से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूं कि कोई यदि कहता है कि हमारे ज्ञान से आपका कल्याण होगा, इसका मतलब वो ज्ञान डुप्लीकेट होगा, क्योंकि ज्ञान किसी बाप की बपौती नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, ज्ञान तो अनादि है और प्रवाह रूप में ये गुरु परंपरा से चल पड़ी है। यदि कोई गुरु ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान के अपने पूर्वाचार्यों का नाम नहीं लेता है तो वह प्रज्ञापराधी है। गुरु को बताना पड़ेगा कि यह परंपरा कहां से आई है, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है ये परंपरा कहां की है, कैसे कैसे हमारे पास आई है और कैसे हम आपको दे रहे हैं। कोई भी ये कहेगा कि ज्ञान देने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि हमारा ज्ञान ले लो, तो आप पहले तो ये प्रश्न कर लेना कि ये ज्ञान की परंपरा क्या है,